کبوتر بازی، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور کئی لوگوں کی چھتوں پہ پاکستان میں پنجرے ہوتے ہیں جس میں لوگوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں۔ مگر کیا ایسا آسٹریلیا میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ بلال بن ضیاء میلبرن کے رہائشی اور پیشہ ور شیف ہیں۔ بلال جب ساتویں جماعت میں تھے تب سے کبوتر پال رہے ہیں، اور جب وہ 2012 میں آسٹریلیا آئے تو انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ یہ شوق یہاں پر بھی جاری رکھ پائیں گے۔ اس وقت بلال نے اپنے گھر پر 120 کبوتر پالے ہوئے ہیں اور ہر سال کبوتروں کی دوڑ میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس انوکھے شوق کے بارے میں بلال کی زبانی ان کی کہانی سناتے ہیں۔
میں جب 7th کلاس میں ہوا کرتا تھا، مجھے اس ٹائم سے اس کا شوق تھا، اور میرے نیبرس تھے ان کے پاس کافی زیادہ پیجنز تھے، تو مجھے وہاں سے ایک شوق یہ ہوا تھا، اور میں جب سے یہ پال رہا ہوں آن اینڈ آف۔
کیا گھر والے اس کی حامی میں تھے؟ وہ انہوں نے آپ کو بچپن میں سپورٹ کیا، انہوں نے آپ کو اجازت دی پالنے کی، یا کس طرح آپ یہ سارا کرتے تھے؟
نہیں، گھر پہ اس کے لیے بہت ایشوز ہوتے تھے، مجھے کبھی بھی سپورٹ نہیں ملا گھر سے، بٹ میری گرینڈ ماں ہوتی تھیں وہ مجھے کافی سپورٹ کرتی تھیں۔ جب ہماری جون جولائی کی آفس ہوتے تھے، اسکول ہالیڈیز ہوتے تھے، تو وہ پریفر کرتے تھے کہ میں گھر پہ رہوں، کچھ ایسی ہابی ہو جو میں گھر میں ہی رہ کے کر سکوں، انسٹیڈ آف کہ میں باہر جاؤں اور کچھ کرکٹ کھیلوں یا کچھ کروں، تو اس لیے وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے۔ تو وہ چیز میرے مطلب وہاں سے میرا شوق تھوڑا زیادہ بھی ہوا اور ان کی سپورٹ بھی تھی۔
کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آسٹریلیا جیسے ملک میں آ کر آپ اپنے شوق کو جاری رکھ پائیں گے؟
میرا کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی، یا میرے مائنڈ میں ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر بھی پیجن ریسنگ ہو سکتی یا میں اسے کنٹینیو کر سکوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بٹ جسٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا پہلے کہ میں ایک بار جس آ رہا تھا فری وے سے، تو میں نے بہت سارے پیجنز اڑتے ہوئے دیکھے، تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہاں پر بھی پیجنز ہیں، اور یہ بھی مغرب کے ٹائم پہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی لوگ اسے مطلب اڑاتے ہیں اور ان کا شوق کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے جا کے گوگل کیا، اور میں ہمارے گھر کے قریب ہی یہاں پر ایک کلب ہے، وہاں میں نے وہاں کا نمبر نکالا، پھر انہیں کال کی، پھر بہت ساری چیزیں ان سے معلوم کی، دین جا کے میں نے کیا نام ہے ان سے جا کے کچھ پیجنز بائی کیے، اور پھر جب سے بس یہ ہے کہ میں اس میں ان ہو گیا۔
پاکستان میں جو کبوتروں کی نسل ہے اور جو یہاں نسل ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟
جی، پاکستان میں بھی اب یہ بریڈ آ گئی ہے لاسٹ 4-5 ایئر سے، مگر بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، یہ امپورٹ نہیں ہو پاتے، امپورٹ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ تر لائک آپ سمجھیں کولڈ ویدر کی عادت ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں موسٹلی ہمارا وارم ویدر ہے، تو یہ سروائیول ریٹ بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہم ان سے جرمنی یا یو کے کہیں سے امپورٹ کرواتے ہیں وہاں پر، تو بہت ہائی رسک ہوتا ہے کہ یہ مطلب سروائیو کر سکیں یا اچھی بریڈ مل سکے آپ کو۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ ریسنگ پیجنز ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں، زیادہ تر وہاں پر ہائی فلائنگ پیجنز ہوتے ہیں جو آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، ہائی چلے جاتے ہیں، بٹ یہ رینج کرتے ہیں، مطلب یہ ڈسٹینس ٹریول کرتے ہیں یہ جو ریسنگ پیجنز ہیں، تو پاکستان میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ مل سکیں کسی کا، اسٹل لوگوں کے پاس اب آ رہے ہیں بٹ وہ بہت ایک لمیٹڈ اسٹاک ہے وہاں پر، بٹ میلبرن یا آسٹریلیا وائڈ آپ جائیں تو یہ بہت کامنلی ایزلی آپ انہیں بائی کر سکتے ہیں۔
تو بلال، بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ لوگ کبوتر کیوں پالتے ہیں، کبوتر ہی کیوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اور بھی جانور پالتے ہیں، تو آپ نے کبوتر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟
دیکھیں، مجھے ایک اسٹارٹنگ میں تو اس کا ایک شوق تھا، ایک مطلب ایک کریز تھا، مجھے ایک چیز پسند تھی کہ میں بیک یارڈ میں جاؤں، ٹائم اسپینڈ کروں، اور بس میں جا کے ایزی مطلب کپ آف کافی ہو، اچھا ویدر ہو، ہم باہر جا کے بیٹھیں اور بیک یارڈ میں وہ پیجنس فلائی کر رہے ہوں، وہ ایک ڈفرینٹ سی فیلنگ آتی ہے اگر آپ کو کسی چیز سے، مطلب کسی کو ڈاگس کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کیٹس کا شوق ہوتا ہے، بٹ مجھے ایک اس کی پتہ نہیں کیوں ایک کریز تھا، تو کافی وہ ہے کہ مجھے ایک بہت اچھی سی وائب دیتی ہیں کہ جب پیجنس اڑ رہے ہوتے ہیں اینڈ دین میں اسے دیکھوں۔ پھر میں نے اسے ایسے ہی کنٹینیو کیا فار فیو ایئرس، بٹ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ریز بھی ہوتی ہے یہاں پر، اور کافی مطلب آپ اس کے اندر ارن بھی کر سکتے ہیں، آپ کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے، اور آپ کافی ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تو پھر میں نے اسے ڈفرینٹ وے میں مطلب لینا شروع کیا، اور میں ڈفرینٹ طریقے سے اسے میرا شوق بھی تھا، اور ساتھ میں اب یہ جو ہے کہ میں اسے کلب ممبر بھی اور ساری چیزیں کرنی اسٹارٹ کی، تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ سا مزہ آتا ہے آپ کو کرنے میں جب آپ اس کے اندر ان ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جن کے 50-50 سال جنہوں نے پیجنس کے پیچھے لگائے ہوتے ہیں، تو یہ کہ بالکل ایک اچھی سی وائبس دیتی ہیں۔
تو کیا بلال، آپ ہی صرف ایک پاکستانی ہیں جو کبوتر بازی کر رہے ہیں آسٹریلیا میں، یا اور بھی پاکستانی ہیں اس شعبے میں؟
2012 سے جب سے میں اسے کا شوق کر رہا ہوں، اور میں 2014 میں فرسٹ ٹائم میں نے انرولمنٹ کرائی تھی کلب سے، تو 2012 سے میں نے کبھی 2021 तक मैंने अभी तक कोई पाकिस्तानी मेरे नजरों से नहीं गुजरा जो क्लब मेंबर हो या कोई प्रॉपरली जिसने रेसिंग पिजन्स बिल्कुल ठीक तरीके से रेसिंग ब्रीड रखी हो। बट कुछ पाकिस्तानी है मेरे नोन में जिनके पास हाई फ्लाइंग पिजन्स है बट वो भी रेस नहीं करते ऑस्ट्रेलिया में। मतलब मैं वो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई सर्किल है वो रेसिंग में नहीं है बट जैसे उन्होंने शौक के लिए रखे हैं। तो मेरी नजर से अभी तक कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं गुजरा जो वाकई में प्रॉपरली रेसिंग करता हो।
आपने 120 कबूतर पाले हुए हैं, तो इनकी देखभाल कैसे करते हैं?
इतने ज्यादा कोई इशू नहीं होता इसका, ना इसका कोई देखभाल इतनी ज्यादा होती है बट इसकी जस्ट क्लीनिंग और इसकी फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी डे आपने इनका फ्रेश वाटर डालना है। अगर ये सारी चीजें आप एवरी डे टेक केयर करें तो देन इनकी कोई इतनी बड़ी कोई टेक केयर करने की जरूरत नहीं होती आपको। यहाँ पर एक्चुअली सारे मोस्टली जो घर हैं वो मतलब ग्राउंड फ्लोर्स के बने होते हैं और हार्डली किसी का फर्स्ट फ्लोर बना हो, और फर्स्ट फ्लोर पे भी इतना वो नहीं होता कि हम फर्स्ट फ्लोर पे पिजन्स रखें और वहां फ्लाई करें। तो मोस्टली लोग जो ऑस्ट्रेलिया वाइड हैं वो बैकयार्ड में रखते हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी ने अपने बैकयार्ड में रखा है। मेरा बैकयार्ड बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है बट एक जस्ट नॉट ह्यूज बट एक जस्ट एवरेज है। तो उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल साइज का डिजाइन करवाया था, खुद डिजाइन किया था बट मुझे एक मतलब जो प्रॉपर जो लॉफ्ट मेकर होते हैं उनसे मैंने उसे बनवाया था, ताकि जो है मैंने अपने हिसाब से उसे इसलिए यूं बनवाया ताकि हमें बहुत इजी हो उसकी क्लीनिंग के लिए। तो आप अगर आपको थोड़ी सी भी हावन होती है तो आप अपने हिसाब का यहाँ पर इजिली कोई चीज बनवा सकते हैं जैसे एज अ लॉफ्ट और केज, जिसको आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है क्लीनिंग के लिए या किसी और पर्पज के लिए। तो जब भी वो मैंने अपने हिसाब से ही बनवाया।
आपने 120 कबूतर पाले हुए हैं, तो इस पे कितना अंदाजन खर्चा आ जाता है? ये क्या काफ़ी महंगा शौक है, या कोई आम बंदा भी अगर ये शौक पालना चाहे तो पाल सकता है?
नहीं, इसमें कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आप इससे अच्छी फीड दें और इनको देखभाल करें आप, तो इनकी जस्ट फीडिंग कॉस्ट आती है और रफली आपकी वंस ट्वाइस इन ईयर आपको इन्हें वैक्सीनेट करना होता है। तो वैक्सीनेशन 120 बर्ड्स के हार्डली 150 to 200 dollars लगते हैं फॉर द ईयर, और बाकी आप इनकी फीडिंग का लगा के चले अगर आपके 120 पिजन्स हैं तो आपको $40, $35 to $40 का आपको फीड आ जाएगा फॉर फॉर अ वीक।
मुझे पता लगा था कि यहाँ पे कबूतरों की नीलामी भी होती है, तो आपने भी कोई ऑक्शन से कबूतर खरीदे हैं?
जी, यहाँ पर ऑक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑक्शंस होते हैं, स्पेशली इनके जो यंग बर्ड्स होते हैं उनकी ऑक्शन होती है दिसंबर टू जनवरी और फेब्रुअरी तक होती है। और ऑक्शंस में पिजन्स यंग पिजन्स स्टार्ट होते हैं $25 से, अलग अलग क्लब्स में डिफरेंट रेट्स होते हैं बट मिनिमम 25 से स्टार्ट होते हैं और वो 4,000 5,000 तक भी मैक्स जाते हैं। डिपेंड्स ऑन के वो किस के पिजन्स हैं और उन्होंने उनके पेरेंट्स ने कितनी लाए मतलब विन करी है रेसेस।
और आपने आज तक सबसे महंगा कबूतर कितने का खरीदा है?
मैंने बहुत सारे पिजन्स खरीदे हैं बट जो मैंने 2016 में एक बर्ड लिया था क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहा था, उनके जो फ्लायर थे वो रिटायर हो रहे थे, वो काफी वेल नोन फ्लायर हैं, उन्होंने बहुत रेसेस जीती हैं अपनी स्ट्रीम में। तो मैंने उस टाइम लिया था $4,400 का लिया था उस टाइम उनसे पिजन्स, और उसी पिजन से मैंने ब्रीड की थी और उसी पिजन से मैंने एक बहुत बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस रेस भी जीती है।
अगली रेस कब आ रही है और आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं?
जी बिल्कुल, 6th of June अभी तक डिसाइडेड है बट ये ऑन ऑफ वीक डिले हो सकती है अगर उस टाइम पे कोई रेन या बहुत डिफरेंट सा वेदर हुआ जो सूटेबल ना हो रेस को।
बिलाल, अभी तक कोई आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपटीशन जीता भी है? और अगर जीता है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आगाह करें कि वो कैसा एक्सपीरियंस था।
जी, मैंने अभी तक 4 कंपटीशन जीते हैं ऑन एंड ऑफ करके, मतलब 2014 से लेके आप 2020 तक लगाएं तो मैंने 4 कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है। और फ्राइडे नाइट को हम पिजन्स देते हैं एंड देन वो सैटरडे आपको आपके पास आते हैं, फिर पता चलता है आपका कौन सा आपने पिजन विन किया है। उसमें बहुत डिफरेंट रेसेस होती हैं, कुछ छोटे किलोमीटर्स की होती हैं, कुछ ज्यादा डिस्टेंस की होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की होती हैं, लॉन्ग किलोमीटर्स होते हैं, तो उसमें विनिंग प्राइसेस होते हैं। पर लॉन्ग डिस्टेंस जो तस्मानिया से होती है उसके ये $100,000 होते हैं विनिंग प्राइस फर्स्ट 3 बर्ड्स के, एंड देन जैसे अगर आपके 3 बर्ड्स आ गए जिनके भी तो उनको 100,000 का प्राइजेस होते हैं, एंड देन जो 3 के बाद से जो भी 10 के बिटवीन आते हैं उनको 75, 50 और 25,000 dollars के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की रेस होती है बट बाकी अगर आप दूसरी देखें तो वो गोल्ड कोस्ट में होती है, $50,000 की रेस होती है और 1 लॉफ्ट होती है, एंड देन बाकी और छोटी रेसेस होती हैं ऑलमोस्ट 15 रेसेस, उसमें आप ऑन एंड ऑफ 20 और 15,000 डॉलर्स आप विन कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कानूनी तौर पर तो कबूतरबाजी की इजाज़त है, लेकिन अगर एनिमल राइट्स के हवाले से बात करें तो उनका क्या कहना है पिजन रेसिंग के बारे में?
ऑन एंड ऑफ वो घर आके चेक करते हैं, काउंसिल भी आपको चेक करती है, और काउंसिल का डायरेक्ट क्लब और फेडरेशन से ऑन लाइक एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट उनसे उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, सारी चीजें उन्हें पेपर वर्क भी वो सबमिट करते हैं। तो ये जैसे ऐसा नहीं है कि आप पिजन्स लाए आपने रख लिया, आपको थ्रू द प्रॉपर चैनल जाना होता है, आपने पहले क्लब में रजिस्टर्ड होना है, देन फेडरेशन में रजिस्टर्ड होना है, वो आपको आके सारी चीजें देखते हैं, देन आपको सारी चीजें बताएंगे कि हाँ आपके पास लॉफ ठीक है, ये है वो, रेन प्रूफ है, एवरीथिंग है, वेदर प्रूफ है, देन आप पिजन्स रख सकते हैं। आप ये नहीं कि आप जाएं और आप सडनली पिजन्स लें और आपके हैं बस मैंने रेस स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं है। बहुत लेंदी प्रोसीजर भी नहीं है, बट बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें जो आपको जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो आपको जब परमिशन मिल जाती है देन एनिमल राइट्स का कोई इश्यू आ नहीं सकता, क्योंकि वो सारी चीजें आपको वो चीजें कवर करते हैं जिसमें आपका पिजन सेव रहते हैं।
कबूतरों को सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ का होता है? एक तो बीमारी का होता है, मुझे पता है आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके अलावा उनकी देखभाल में सबसे कीमती चीज़ क्या है?
देखिए सबसे जो कीमती चीज है वो तो वैक्सीनेशन है इसकी, अगर आपने इनकी वैक्सीनेशन टाइम पे कर दी देन बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि ये कोई वायरस कैच करे या ये सेक हो जाए, ऐसा नहीं, बट आपको देखना पड़ता है जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम ये मांगते हैं अपनी क्लीनिंग में, और इनको एटलीस्ट आप 35 to 40 मिनट्स आप इनको दे सकते हैं, अगर आपके पास 120 बर्ड्स हैं तो आप उसमें आप देख लेते हैं, कोई पिजन्स अगर थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है तो आप उसे कुछ ट्रीट कर सकते हैं, वेट के पास ले जा सकते हैं, तो ये छोटी सी चीज होती है। क्लीनिंग का बहुत ज्यादा इश्यू है इसके अंदर, आपने इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स क्लीनिंग मांगता है अगर 120 बर्ड्स हैं आपकी, हार्डली 10 मिनट्स। अगर आप इसे क्लीन रखेंगे और क्लीन फूड देंगे, अगर कोई इसके अंदर डस्ट मिक्स नहीं है या कोई मतलब वेट नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यूज आते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी इश्यू की बात करते हैं तो फॉक्स है, अगर आप कोई आपका लॉफ्ट इस तरीके का डिजाइन है या आप कंट्री साइड के करीब करीब रहते हैं तो वहां पर फॉक्स ऐसे हैं कि फॉक्स बहुत छोटे भी होते हैं और वो पिजन्स के लॉफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और वो सारे पिजन्स मार देते हैं। एक ये मेन इशू जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान में बिल्लियों का होता था बट यहाँ पर
बिल्कुल।
फॉक्स का है।
और बिलाल मुझे ये बताइएगा कि इनकी जो देखभाल है, रोज़मर्रा देखभाल, उसमें कितना वक्त लग जाता है आपको?
अगर आप इसे प्रॉपरली आप इसे पैशन के साथ और सारी चीजें बिल्कुल डिटेल क्लीनिंग और सबके साथ करें तो 120 पिजन्स के साथ आप 4x4 या 4x6 का केज भी अगर आप है आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं तो 35 to 45 मिनट्स मैक्स आपके लग जाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल थ्रोल प्रॉपरली मतलब आप सारी चीजें देख सकते हैं, प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं, न्यू पानी डाल सकते हैं उसके अंदर, न्यू फीड डाल सकते हैं, और बाय द टाइम जब आप पिजन रिलीज करते हैं देन वो वापस आते हैं तो आप उनको देख भी सकते हो, आपके नजरों के सामने ही उड़ रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो 45 मिनट्स मैक्स होता है आपको कि आप उसके अंदर आप इनकी सारी चीजें कर सकते हैं।
पाकिस्तानी जो यहाँ पे हजरात रहते हैं और जो कबूतरबाजी में शौक रखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो क्या करें?
जी अगर जो पाकिस्तानी इंटरेस्टेड हैं और जिनका ये पैशन और जो इसमें आगे आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली पहले तो क्लब ज्वाइन करें एंड देन वहां से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको, एंड देन डेफिनेटली आप आए, क्योंकि हम अगर क्लब जाएं फेडरेशन जाएं तो आप अरब्स बहुत देखेंगे, आप ऑजी बहुत देखेंगे, आप बहुत सारे मलेशियन और श्रीलंकन लोग भी आपको थोड़े बहुत दिख जाएंगे, बट हम में कभी पाकिस्तानी या इंडियन हमें नहीं देखता।
बिलाल बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर एसपीएस उर्दू से बात करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इस अनोखे शौक के बारे में जानकर लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं।
इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई या जहाँ से भी आप पॉडकास्ट सुन सकें।